प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधि गौर भक्त वृंद
Last night nahi hai, we are not listening here, we are here to chant.
Krishna.
श्री वृंदावन धाम की, श्री गोवर्धन की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, कुसुम सरोवर लीला स्थली की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, निताय निताय गौर प्रेम आनंदे। तो आप लोगों का स्वागत है कुसुम सरोवर पे। तो प्रभु जी बहुत सुंदर ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों गोवर्धन की लीलाओं के बारे में, तो विशेष कुछ ज़्यादा नहीं है बताने के लिए, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे जो भी थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आज जो है कृष्ण भगवान की लीला स्थलियाँ हम देखने आए हैं। तो ये जो व्रज मंडल है 84 कोस, कितने कोस? एक कोस में कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। तो लगाइए कि 84 × 3 कितना हुआ? 252, 252 किलोमीटर का ये क्षेत्र जो है 84 कोस। ये यूपी का क्षेत्र नहीं है, लोग सोचते हैं उत्तर प्रदेश आगरा या होटल से शुरू होता है, तो ये 84 कोस का जो क्षेत्र है ये कैसा है कि ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान जब कहीं जाते हैं है ना, तो जाने से पहले भगवान वैसी व्यवस्था बनाते हैं। जिस प्रकार से हमें यहाँ पर आना था, कहाँ? गोवर्धन वृंदावन, तो हमने क्या किया, पहले से कॉलिंग किया, ऐसे ऐसे है इतने लोगों की रूम चाहिए हमको, तो प्लीज़ बुक दैम, प्रसादम इतने बजे, बस इतने बजे। तो सोचिए जब हमारे जैसा एक व्यक्ति इतनी अरेंजमेंट करके चलता है, तो क्या भगवान बिना अरेंजमेंट के आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो भगवान ने क्या अरेंजमेंट किया, भगवान जब पृथ्वी पर आने वाले थे तो उनके आने से पहले गाय के रूप में जो पृथ्वी माता हैं वो जाती हैं कहाँ? ब्रह्मा जी के पास, और कहती हैं कि इस समय कलयुग आने वाला है और द्वापर का अंत हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दुख बढ़ गए हैं, क्योंकि कंस यहाँ पर मथुरा में जो राजा थे वो बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं भक्तों के साथ, संतों के साथ। तो ऐसा कुछ करिए जिससे कि कंस जैसे जो राक्षस हैं उनका वध किया जा सके। तो जब इस प्रकार से देवी रोई तो ब्रह्मा जी ने जाकर किसके पास प्रार्थना करी? भगवान विष्णु के पास। और विष्णु किसके अंश हैं? कृष्ण के। जैसा प्रभु जी ने आज आपको सुबह बताया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं है। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है। उन श्रीमद् भागवतम में सारे अवतारों को अवतार बताया गया, अवतार मतलब जिसमें से कुछ चीज प्रकट होती है। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं क्यों बोला गया? क्योंकि भगवान जब स्वयं आते हैं तो वो कृष्ण के रूप में आते हैं। ऐसा नहीं है कि विष्णु का इनकार्नेशन है जो कि राम या अलग अलग रूपों में नरसिंह रूप में आ रहा है, लेकिन ये जो है एते च अंश कला पुंसक कृष्णस्तु भगवान स्वयं मृणंती युगे युगे, और ये अलग युग में जो है आते हैं भगवान, युग युग के अंदर। तो एते च अंश कला पुंसक का अर्थ है कि तो भगवान के अवतार है, एक अंश अवतार और एक कला अवतार। अंश अवतार में भगवान कुछ लीलाएं करते हैं, कला अवतार के अंदर भगवान उपदेश देते हैं या फिर असुरों का वध करते हैं, लेकिन जब भगवान स्वयं आते हैं तो सारी चीजें करते हैं। भगवान ने गीता का उपदेश भी दिया, कृष्ण लीला भी करी, और भगवान ने असुरों का वध भी किया, कंस जैसे वध, जरासंध जैसे असुर, शिशुपाल जैसे असुरों का वध किया। तो भगवान जब करते हैं एते च अंश और कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोके मृयन्ति युगे युगे, और ये जो है हर एक युग में भगवान आते हैं, लेकिन कृष्ण के रूप में सिर्फ द्वापर में आते हैं। और आपको एक विशेष बात बताकर आनंद महसूस होगा कि भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में सिर्फ एक बार आते हैं। तो आप पूछेंगे ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? तो ब्रह्मा जी का एक दिन में ब्रह्मा जी 12 घंटे होते हैं ना, जैसे हमारे 24 आवर्स हैं, उसमें से 12 घंटे में ब्रह्मा जी 14 मनु की रचना करते हैं। मनु का तात्पर्य है मनु से मनुष्य प्रजाति प्रकट होती है, हम मनुष्य हैं ना, मनुष्य मतलब मनु से निकलने वाले। तो वो जो मनु है वो 14 मनु की रचना करते हैं, और उन 14 मनु में से सिर्फ जब 7वां मनु जिनका नाम है वैवस्वत मनु, जो अभी इस समय हमारे मनु है, उस वैवस्वत मनु के जो एक मनु 71 चतुर्युग दिव्य चतुर्युगों में जाते हैं। चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, ये टोटल मिलाकर 43 लाख ईयर्स के होते हैं चार युग। ऐसे जब 71 साइकल्स घूमते हैं तब एक मनु की समाप्ति होती है, और ऐसे जब 14 मनु समाप्त होते हैं तब जाकर ब्रह्मा जी के 12 घंटे समाप्त होते हैं। और जब ब्रह्मा जी की इसी प्रकार से रात्रि होती है 12 घंटे की, और फिर इस प्रकार से जब 365 दिन निकलते हैं तब एक साल निकलता है, और फिर ऐसे 100 साल समाप्त होने पर ब्रह्मा जी भी समाप्त हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण आते हैं, सिर्फ एक दिन में, 14 मनु होते हैं। सबसे पहले मनु कौन थे, और उसके बाद स्वयंभू मनु, फिर चाक्षुष मनु, तामस मनु है, सुरेषित मनु, इस प्रकार से मनुओं के सातवें मनु है व्यवस्थित मनु, जो इस समय है। जैसा प्रभु जी बता रहे थे, विवस्वान जिनको भगवान ने ज्ञान दिया, सूर्य के देवता है, उनके पुत्र है व्यवस्थित मनु। उन मनु के 27 चतुर्युग जब निकल जाते हैं, 27 साइकिल्स चतुर्युग की निकल जाती है, तो 28वें साइकिल में, 28वां चतुर्युग चलता है, उसके द्वापर में कृष्ण और उसके कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम भी उसी 28वीं साइकिल में आए हैं। खुशी की बात नहीं है, सोच के देखिए। और हम इतने भाग्यशाली हैं कि अभी ये लीला स्थली बस अभी द्वापर 5000 साल पहले समाप्त हुआ और हमें इसके दर्शन करने का मौका मिल रहा है। आप सोचिए, जो अगले मनु आएंगे, सावर्णी मनु, और फिर उनके बाद जो मनु आते रहेंगे, उन मनुओं के अंदर कितने बार युग घूमेगा और ये कृष्ण नहीं आएंगे। तो भगवान बताते हैं 1000 टाइम के बाद में भगवान एक बार जन्म लेते हैं। तो हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमको भगवान की लीला स्थलें देखने का मौका मिल रहा है। तो बताते हैं कि द्वापर में श्रीमद् भागवतम जो है हम पढ़ते हैं, ग्रंथ जो हमारा शास्त्र है, जिनके कारण वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, 17 पुराण लिखे, और 17 पुराण लिखने के बाद भी उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। संतुष्टि जब प्राप्त नहीं हुई तो फिर उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि से पूछा कि मुझे संतुष्टि क्यों नहीं प्राप्त हुई। तो उन्होंने बोला, क्योंकि अभी तक तुमने सिर्फ ज्ञान लिखा है, भक्ति के बारे में वर्णन नहीं किया, कृष्ण के बारे में वर्णन नहीं किया, इसी के कारण संतुष्टि नहीं है। आप देखिए अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के मंत्र करिए, लेकिन जब तक आप हरे कृष्ण मंत्र नहीं करेंगे आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। जैसा प्रभु जी ने आज सुबह आपको हरे कृष्ण महामंत्र की ग्लोरीज के बारे में बताया कि सारे के सारे शास्त्र कहते हैं क्या, कि 32 अक्षरम मंत्रम, 32 अक्षरों का मंत्र है। कौन सा मंत्र है देखिए, आप उसको कैलकुलेट करिए। 32 मतलब 32 सिलेबल मंत्र, 32 अक्षरम मंत्रम, षोडश नाम कान्वितम, 16 नामों का मंत्र है। प्रजपन वैष्णवम नित्यम, जो इसको वैष्णवों के बताए नियमों के अनुसार जप करता है, राधा कृष्णम स्थलम लभेत, उस व्यक्ति को राधा कृष्ण का स्थल मिलता है। आप देखिए, आप लोगों में से सभी लोग एक एक माला तो करी होगी, है ना, और देखिए जप करने से क्या प्राप्त हुआ आपको, राधा कृष्णम स्थलम लभेत। अब ये मत सोचिए कि मर जाएंगे उसके बाद कुछ निकलेगा फिर वो जाएगा ऊपर फिर राधा कृष्ण स्थल, वो तो है, लेकिन साथ में भगवान जब आते हैं यहाँ पर तो अपने लिए अरेंजमेंट करते हैं, है ना, हम यहाँ पर बता रहे थे चर्चा में। तो इसी प्रकार से जब कृष्ण के पास वो देवी गई तो उन्होंने बोला मैं आने वाला हूँ, तो राधा रानी क्योंकि भगवान की अंतरंगा शक्ति है, तो उन्होंने बोला भगवान आप जाएंगे लेकिन आपने कोई व्यवस्था तो करी नहीं है, जाकर आप रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। तो भगवान बोले कि मैं जाऊँगा नीचे, पृथ्वी पर बुला रहे हैं मेरे को भक्त। बोले नहीं नहीं, आपको तो आदत है गोलोक वृंदावन में रहने की, है ना, ऐसा धाम नीचे पृथ्वी पर है ही नहीं। तो भगवान बोले कि हाँ ये बात तो तुम्हारी ठीक है। बोले ना ही तुम्हारे पास ग्वाल बाल है, तो फिर आप कैसे, गाय नहीं, आप कैसे जाएंगे इस पृथ्वी पर, कलयुग रूपी पृथ्वी पर, जहाँ दुर्योधन और कंस जैसे, धृतराष्ट्र जैसे असुर रहते हैं। तो भगवान ने क्या किया, उस गोलोक धाम जहाँ वो खड़े थे विराजमान, वहां से अपनी एड़ी को ऐसे मारा, एड़ी मारते ना पैर की, और उसमें से एक पत्थर गिरा जो 84 कोस में आके गिरा, और वो 84 कोस साक्षात भगवान गोलोक धाम वृंदावन का प्रकट रूप है। लेकिन हम इसको भौम वृंदावन कहते हैं, भौम मतलब भूमि का वृंदावन, क्यों, क्योंकि ये एक विंडो है, जैसे एक छोटी सी विंडो खिड़की से आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देख सकते हो ना, जैसे अपने मंदिर में खड़े हो तो हमें रेडिसन होटल नजर आएगा, या अपने ऑफिस की बिल्डिंग में खड़े हो तो एक बहुत बड़ी मीनार नजर आएगी। इसका मतलब ये है कि वो छोटी सी खिड़की आपको ले जा सकती है कहां, ओरिजिनल बिल्डिंग तक। तो गोलोक वृंदावन धाम जो ओरिजिनल है, वहां तक जाने का, ये भी ओरिजिनल ही है, लेकिन उसका क्या है, प्रतिभू स्वरूप है। एंड अगर हम यहाँ पर संतुष्टि प्राप्त करेंगे, यहाँ की लीला स्थलियों से आकर्षण प्राप्त करेंगे, तो हमें वहां पे भी आकर्षण आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ हम 50-50 करें और वहां जाके टोटली बन जाएंगे। सर्वेंट बनना है तो यही बनना है। इसीलिए देखिए हर एक भक्त के नाम के पीछे प्रभुपाद ने दास लगाया, दयालु गोविंद दास, प्रशांत मुकुंद दास। दास क्यों लगाया, इस बात का रिमेंबर कराने के लिए कि हम कौन है, सर्वेंट्स, गोपीर भरती और पद कमले और दास दास दासा अनुदास, मैं दास के दास का दास हूँ। हमारे गुरु कौन, बोले वो दास, वो उनके वो दास, और हम कौन, बोले हम बिंदास, नहीं नहीं हम जो है सबसे नीचे सर्वेंट्स हैं, बिंदास नहीं बनना है, बिंदास तो अपने आप हो जाएंगे कृष्ण भक्ति में आके, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे को समझना। तो ये जो गोलोक वृंदावन धाम का प्रकट रूप है, इसको उत्तर प्रदेश में समझिए, लेकिन इसको देखने के लिए क्या चाहिए, प्रेम अंजन वाली आंखें चाहिए, प्रेम अंजन छुरित भक्ति विलोचने ना, आंखों में प्रेम का अंजन लगाएंगे तो फिर क्या होगा, हमको श्याम सुंदर के दर्शन होंगे, अन्यथा क्या होगा, मानसी गंगा में जाके किस किस को अच्छा लगा और किस किस को बुरा लगा, अच्छा किसको लगा, अच्छा ठीक है, और किस किस को बुरा लगा वहां पर एनवायरमेंट देख के, सच सच बोलिए, मतलब ये नहीं वहां पे गंदगी है, मिट्टी है, पानी ऐसा है, कीचड़ है, कितने लोगों को लगा है ना, आपको भी सच 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 बोले तो सबको लगता है। इसीलिए लगता है क्योंकि अभी हमको है ना दिव्य वृंदावन का दर्शन नहीं होता। सोचिए अगर हमारी माँ है ना, हमारे माँ बाप ऐसी स्थिति में, ऐसी डिसीज हो जाए उनको कि उनके शरीर से मलमूत्र निकल रहा है, तो क्या आप उनको प्रेम करना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। क्यों? क्योंकि आप वहां पर ममता को जानते हैं, शरीर को नहीं समझ रहे, आप वहां पर मां रूपी ममता को समझ रहे। लेकिन यहां आने के बाद हमें कृष्ण रूपी भगवान से ममता नहीं है, इसके कारण हमको गंदगी नजर आएगी, यहाँ के सुअर, यहाँ की टूटी सड़कें नजर आएंगे, यहाँ के लोग नजर आएंगे, पैसे मांगते भिखारी नजर आएंगे। लेकिन जब हम इसको समझेंगे ये दिव्य वृंदावन धाम है, तो फिर हमको ये सारी चीजें नजर नहीं आएंगी। ऐसे दिव्य वृंदावन धाम के अंदर कितनी सुंदर लीला स्थलियां, अनगिनत लीला स्थलियां हैं। अगर हम यहाँ पर पूरा जीवन भी बिता दें तो भी हम उसकी लीला स्थलियों का स्मरण और प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन समय कम है तो हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जो कुसुम सरोवर है ये बहुत सुंदर स्थली है। कुसुम मतलब फूल और सरोवर मतलब तालाब। तो ये तालाब नहीं था पहले, ये जो कुसुम वन था है ना, कुसुम वन जहाँ पर फूल चुने जाते थे। तो यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है कार्तिक के महीने में, सांझी फेस्टिवल, सांझी उत्सव होता है। और सांझी उत्सव के अंदर राधा रानी, यहाँ से थोड़ी दूर पे बरसाना धाम है और इधर क्या है आपका वृंदावन। तो वृंदावन और नंदगांव से कृष्ण आते हैं इधर, और बरसाना धाम से यहाँ पर राधा रानी आती है। तो जब बरसाना धाम से वो आते हैं तो वहां पर सांझी फेस्टिवल होता है। सांझी फेस्टिवल मतलब सारे के सारे ब्रजवासी, बरसाना वासी अपने अपने घरों को सजाते हैं बहुत सुंदर तरीके से, और उसके बाहर पेंटिंग बनाते हैं गोबर की, और उसमें गाय बनाएंगे। आपने देखा होगा गांव में चित्रकारी होती है घरों के बाहर, तो वो उसको सांझी बोला जाता है। सांझी को सजाया जाता था फूलों से, रंगों से, और फिर जो नंदगांव के ग्वाल बाल हैं वो सेलेक्ट करेंगे किसकी सांझी अच्छी है, और फिर अवार्ड दिया जाता था। तो राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा, चंपकलता, सारी जितनी भी रंग देवी, भू देवी, सारी की सारी सखियां आती थी और यहाँ पर फूल कलेक्ट करती थी अपनी सांझी को सजाने के लिए। तो एक बार बहुत सुंदर लीला हुई कि यहाँ पर राधा रानी अपने फूल चुनने के लिए आई, तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा एक डाल जिसमें फूल बहुत सारे, अनगिनत फूल लगे हुए हैं। तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई, बोली अरे अरे देखो ललिता कितने नीचे फूल है, देखो जरा चुनो, उठा लो ऐसे करके। तो वो बोले ऐसे डाल को पकड़ो, हम पकड़ लेते ना डाल को, और फिर फूल ऐसे चुनने लगे। अब फूल चुनी रही थी, इतने में क्या हुआ वो डाल अपने आप ऊपर चली गई और राधा रानी ऊपर हवा में, नीचे धरातल से गायब, ऊपर हवा में लटक गई। और सारी की सच्चे अरे राधा रानी ये क्या हो गया, तुम कहाँ चली गई इतनी ऊपर? तो क्या देखा कि उस डाल के ऊपर जानबूझकर कृष्ण बैठे हुए थे और उन्होंने पैर से उसको दबाकर नीचे किया हुआ था। और जैसे ही कृष्ण भगवान ने अपना वेट हटाया, राधा रानी हवा में ठहर गई। तो ये राधा और कृष्ण जो है वो इस प्रकार की लीला करते हैं, है ना। ये कोई इंटरनल एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर नहीं है। लोग बोलते हैं कि ये ना एक शारीरिक संबंध है, शारीरिक संबंध नहीं है ये। अगर समझें तो देखें कितने छोटे हैं कृष्ण भगवान इस वृंदावन में। जब थे भगवान का जन्म मथुरा में होता है, और 3 साल की आयु में भगवान जो है वो बचपन में ही चले जाते हैं नंदगांव, गोकुल चले जाते हैं, और गोकुल से 3 साल की उम्र में चले जाते हैं नंदगांव, और नंदगांव से फिर 7 वर्ष की उम्र में, जैसे प्रभुजी ने बताया, गोवर्धन लीला करते हैं, वृंदावन में रहते हैं, और 11 वर्ष की उम्र में वृंदावन त्याग के मथुरा चले जाते हैं, और मथुरा में 30 साल की उम्र तक भगवान रहते हैं, और फिर द्वारका जाते हैं, और द्वारका में 30 से 125 साल की उम्र तक अपनी अनगिनत लीलाएं करते हैं, है ना, जिसमें महाभारत युद्ध है और उद्धव संवाद है, सुदामा लीला है, अनेक लीलाएं करते हैं भगवान। तो समझने के बाद ये है कि जब भगवान 11 साल की उम्र में वृंदावन त्याग के जा रहे हैं, तो समझिए उस समय कि 11 साल से कम उम्र का लड़का क्या किसी लड़की के साथ एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर करेगा क्या? ये कोई शारीरिक संबंध नहीं है, ये अंतरंग संबंध है, क्योंकि भगवान जो है उनकी अंतरंगा शक्ति है राधा रानी। ये बहुत समझने की बात है। हम लोग समझते हैं अरे रासलीला है, मुझे तो कैरेक्टर ढीला, इस तरह की चीजें बोलते हैं ना, ये रासलीला जो हमारी समझने की चीज ही नहीं है। इसलिए शिला प्रभुपाद बोलते हैं अगर आपको भागवतम को समझना है तो 1st कैंटो से पढ़ना शुरू करिए, और आप पढ़ते पढ़ते जब 10th कैंटो में पहुंचेंगे तब आप रासलीला को समझने के योग्य बनेंगे, जब आप 9 स्कंदों के अंदर भगवान के 23 अवतारों के बारे में समझ चुके होंगे ऑलरेडी। यज्ञ अवतार, हंस अवतार, श्री राम अवतार, नरसिंह अवतार, वरह अवतार, भगवान के मत्स्य, कच्छप, इन अवतारों का वर्णन समझेंगे तब समझेंगे कि कृष्ण कौन है। ये कोई कैरेक्टर ढीला वाला लड़का नहीं है, ये साक्षात ब्रह्मांड नायक स्वयं कृष्ण है जो यहाँ लीला कर रहे हैं, है ना। तो ये समझने की चीज है। तो वो सांझी के लिए लड़कियां यहाँ से फूल चुन कर जाती थी। तो एक बार क्या हुआ, कृष्ण भगवान बोले उनकी तो आदत थी राधा रानी को परेशान करने की, तो उन्होंने एक दिन बोला ये लीलाएं करते हैं। तो भगवान बोले कि आज मैं जो हूँ राधा रानी के साथ जो है क्या करूँगा, एक लीला करूँगा। तो बलदाऊ जो कृष्ण भगवान के बड़े भाई सखा हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया था कि वो शेष नाग बन जाते हैं, तो बहुत सुंदर भगवान को, उनको दाऊ जी बोला जाता है। यहाँ ऊपर दाऊ जी का मंदिर है, है ना, यहाँ पर, हाँ आगे, यहाँ दाऊ जी का मंदिर है, लेकिन हम वहाँ जाते नहीं क्योंकि ऊपर चढ़ना पड़ता है पहाड़ी पे, है डोका दाऊ जी, डोका दाऊ जी बोलते हैं। वहाँ से दाऊ जी का मतलब बलराम जी का मुकुट नीचे गिरता है और शिला के ऊपर अभी भी निशान बना हुआ है वहाँ पर, आप देखें। ऐसे कई अनगिनत स्थान हैं इस गोवर्धन में जहाँ पर भगवान कृष्ण, बलराम, गाय, उनके निशान हैं। क्यों? क्योंकि ये जो गोवर्धन है ये अपने आप को पिघला देता है बिल्कुल भगवान की सेवा में, एकदम ऐसा सॉफ्ट बन जाता है कि बस भगवान के चरणों में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसी सेवा करें, है ना। इसीलिए बोलते हैं दासों में दास कौन है, गोवर्धन, हरिर्दास वर्यम, दास है युधिष्ठिर, अर्जुन, इतने सारे दास हैं, लेकिन उन दासों में सर्वश्रेष्ठ दास है कौन, गोवर्धन। तो इसका हम वर्णन करेंगे इस कुसुम सरोवर लीला के बाद में कि क्यों गोवर्धन जो है वो बेस्ट दास बताए गए हैं भगवान के, हमें उनसे क्या सीखना चाहिए, है ना। तो उसमें बताते हैं कि यहाँ पर उन्होंने बोला बलराम जी को कि देखो मेरे ना आज बुखार आ रहा है पूरे शरीर में, मैं बोलते हैं ना बुखार हो जाता है, स्कूल में बच्चे जाना नहीं चाहते, मेरा बेटा हमेशा बहाना करता है कि आज स्कूल नहीं जाना है, बुखार आ गया है, बच्चे बहाना करते हैं। तो बलराम जी क्योंकि बड़े भाई हैं तो वो समझ गए कि देखो शरारती कृष्ण आज जो है जाना नहीं चाह रहे हैं, देखो वहाँ पर गैया चराने वृंदावन। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है बुखार है तो तुम रुको, मैं चला जाता हूँ गैया लेके। तो कृष्ण भगवान बोले कि देखो दाऊ जी आप भी जाना, अगर आप नहीं जाओगे तो ये ग्वाल बाल जाएंगे ही नहीं मुझे छोड़ के। तो फिर वो चले जाते हैं। जब जाते हैं तो कृष्ण यहाँ अकेले रह जाते हैं और अकेले रह के क्या करते हैं, अपना वेश बना लेते हैं वन माली। किसका वेश? वन माली। वन माली मतलब जो वन के अंदर देखरेख करता है फूलों की, है ना। और फिर राधा रानी अपनी साड़ी है फूल चुनने के लिए यहाँ पर आती है। जब वो आती है तो ये वन माली क्या करते हैं, खबरदार मेरे इस कुसुम वन से कोई फूल नहीं चुन सकता। तो है ना बोलती है अरे आप कौन है, मैं वन माली हूँ। अरे अरे आप तो वन माली हो, ललिता सखी कहती हैं जो उनकी प्रिय सखी हैं राधा रानी की, आप तो वन माली हो, ये तो राधा रानी है। राधा रानी मतलब ये वृंदावनेश्वरी है, वृंदावन की रानी है। और रानी अगर किसी फूल चुनने आए तो किसी माली की क्या वैल्यू है उसके सामने कुछ बोले, है तो ये देखो आई है तुम्हारे सामने फूल चुनने की, तुम्हारी किस्मत है। तो है ना कहते किसी की किस्मत विस्मत नहीं, यहाँ कोई रानी वानी नहीं चलती, यहाँ का राजा मैं हूँ वन माली। तो है ना फिर है ना इतनी देर में क्या होता है, उनको नजर आ जाती है उनकी बांसुरी, यहाँ पर उन्होंने छुपा रखी होती है ना बांसुरी, कृष्ण को प्रिय है। तो वो बांसुरी उनके पास थी, तो बांसुरी देखकर राधा रानी की सखी होती है दूसरी विशाखा सखी कहती है राधा रानी ये वन माली नहीं है, ये वन बिहारी है, ये वृंदावन का लाडला श्री कृष्ण है और जो तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। तो राधा रानी कहती है अच्छा, तो उनकी बांसुरी देखती है हाँ हाँ ये तो वही है। तो इतने में पता चल जाता है, तो कहती है अरे कृष्ण तुमने हमें डिस्टर्ब कर दिया, हमें फूल तोड़ के सांझी में जाना था, यमुना तक जाना था, इनको धोना था सारे फूलों को यमुना नदी में, अब तुमने लेट कर दिया, अब यहाँ यमुना कहाँ से आएगी, अब हम अपनी सांझी में फेल हो जाएंगे। तो कृष्ण कहते हैं देखो राधा रानी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि यमुना नदी यहाँ पर प्रकट हो जाएगी और अपनी बांसुरी वो जो प्रिय बांसुरी है उसको यहाँ जोर से मारते हैं इसी वन के अंदर और यहाँ पर एक कुंड प्रकट हो जाता है और जिसमें जो है यमुना नदी का जल प्रवेश कर जाता है। इसीलिए इस जगह का नाम कुसुम वन से बदल कर क्या हो गया, कुसुम सरोवर। और फिर उसी सरोवर में कृष्ण उनके फूलों को धोते हैं यमुना नदी के जल में और फिर वो राधा रानी जाती हैं और सांझी को सजाती हैं। सजाने के बाद में कृष्ण चले जाते हैं और फिर जो उनकी जितनी भी सखियां हैं वो कहती हैं हम तो लेट हो गए। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरी को एक गिफ्ट चाहिए, मैंने आपकी इतनी सेवा करी, इतनी हेल्प करी, क्या? बोले मैं आपके केशों को सजाऊंगा यहाँ के फूलों से। तो यहाँ से कुसुम सरोवर से थोड़ा सा एक कदम हम आगे चलेंगे 5-6 कदम तो यहाँ पर एक इस्कॉन का टेम्पल है बहुत सुंदर सा, राधा वन बिहारी मंदिर। और उस मंदिर में आप देखें तो क्या है, उसमें एक बहुत सुंदर सा गोवर्धन शिला है राधा रानी का और एक कृष्ण का है जो बड़ा, और राधा रानी के केश को निहा मतलब सजा रहे हैं, बाल कंघी कर रहे हैं भगवान और फिर उनको फूलों से यहाँ कुसुम वन के फूलों से सजाते हैं। तो कहते हैं कि आज भी देवी देवता और जो है ब्रजवासी जो आते हैं यहाँ पर रात को मतलब सुबह 4 बजे फूल चुनने के लिए, इसलिए मना किया जाता है कि 5 बजे के बाद हम कुसुम सरोवर में प्रवेश करें क्योंकि उस समय ये लीला स्थली है। तो अभी आप बोलेंगे कि अरे प्रभु जी इतनी गंदी जगह में कोई देवी देवता आएंगे, तो बताते हैं भगवान ने कृष्ण भगवान ने बोला था वृंदावनम परित्याजम एकम पदम न गच्छते, वृंदावन का परित्याग कर मैं एक भी कदम आगे नहीं जाऊंगा। तो क्या भगवान अपनी बात से टल जाएंगे? आज भी भगवान साक्षात प्रकट है यहाँ पर। तो कृष्ण जैसे एक्सपेंड करते हैं ना अपने आप को, तो वैसे कृष्ण ने एक्सपेंड किया। और यहाँ जो कृष्ण है उनका नाम है यशोमती नंदन कृष्ण, और जो कृष्ण चले जाते हैं वो है देवकी नंदन कृष्ण। तो जिस प्रकार से जब पैदा होते हैं ना, उस समय भी दो कृष्ण पैदा होते हैं, एक होते हैं देवकी नंदन कृष्ण और एक होते हैं यशोदा रानी के घर में यशोमती कृष्ण, यशोमती नंदन कृष्ण। और फिर जब वो लेकर आते हैं नंद बाबा, उनको अपने वासुदेव लेके आते हैं नंद बाबा के घर में और वहां आके रखते हैं, तो वो दोनों कृष्ण आपस में एक हो जाते हैं। और फिर 11 वर्ष तक वो लीला करते हैं, और फिर 11 वर्ष के बाद में क्या होता है, जब वो जाते हैं तो उन्हीं में से वो एक्सपेंशन जो है वो चला जाता है, और वो जाकर फिर द्वारका और मथुरा की लीला करता है। बहुत गूढ़ बातें हैं, समझने में मुश्किल लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे दो हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, क्योंकि भगवान है असंख्य, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उनकी अवतार भी अनंत है। हम अपनी बुद्धि से समझना चाहें बहुत मुश्किल है हमारे लिए, है ना। तो फिर जाकर वो सांझी वहां पर जाकर जब सजाती हैं, तो जितने भी लोग होते हैं वो जाकर देखते हैं कि इनकी सांझी बेस्ट है, जो राधा रानी की है। ललिता और विशाखा सखी को अवार्ड मिलता है, तो सारे बोलते हैं आपकी इतनी सुंदर कैसे है। तो उन्होंने बोला क्यों, क्योंकि इसके अंदर खाली फूल नहीं है, इसके अंदर क्या है, कृष्ण प्रेम, जो कि हम रोज सुबह मंगला आरती में बोलते हैं, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण चरणों में प्रीति शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, है ना। तो वो कृष्ण प्रेम अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस कुसुम सरोवर खाली एक ये महल नहीं है, इसको 1760 मेरे ख्याल से एग्जैक्टली यही है, हाँ 1760 में भरतपुर के राजा जहांवीर सिंह ने जवाहिर सिंह ने बनाया था इसको, और अपने पिता सूरजमल ने इनको बनाया था, उसके बाद में इसकी रिपेयरिंग उन्होंने करी थी 1760 में, भरतपुर के राजा थे। और ये जो है इनको छत्री बोला जाता है, तो इनमें विशेष प्रकार की छत्रियां हैं, और ये हैं आपके जितने भी मुगल संप्रदाय में उस समय जितने भी होते थे ये राजा लोग जो होते थे, जयपुर के राजा, जोधपुर के, भरतपुर के, वो लोग इस प्रकार के महल में रहने के आदि थे, और वो राधा कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। तो इसीलिए वृंदावन के जितने भी मंदिर हैं आप देखें, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद देव, ये सारे जब औरंगजेब ने यहाँ हमला शुरू किया तो उनको यहाँ से उठाकर जयपुर में रखा गया था। तो कभी हम लोगों का आश्रय क्लास अगर प्लान करें तो हम लोग जा सकते हैं जयपुर, और प्रभु जी और हम तो जाते रहते हैं जयपुर में, और बहुत उसको बोला जाता है लुप्त वृंदावन, गुप्त वृंदावन, या फिर कनक वृंदावन, सोने जैसा वृंदावन, क्योंकि असली वृंदावन जो था, लेकिन उसको फिर क्या हुआ, औरंगजेब के समय में तोड़ दिया गया, सारे मूर्तियों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, सात सात मंदिर के राधा गोविंद देव, सेवन स्टोरीड बिल्डिंग थी, उसमें से ऊपर की पांच बिल्डिंग तोड़ दी उन्होंने, आज दो बिल्डिंग है खाली ऊपर, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर। और वहां के राधा गोविंद देव जो है वहां पर भी भगवान है, लेकिन वो कहें उनकी प्रतिभूत स्वरूप है, उनकी है रेप्लिका है, बट ओरिजिनल राधा गोविंद देव जयपुर में विराजमान है। तो अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो हम कभी गुप्त वृंदावन जो है वहां भी जा सकते हैं। तो ऐसा है ये कुसुम सरोवर जहां पर यमुना का जल साक्षात प्रकट है ना। और देखिए जो ये मानसी गंगा है आपकी, जिसमें हम गए थे, तो आप देखिए गंगा जी है उसके अंदर, जैसे हम बताया कि कृष्ण ने अपने मन से क्या किया, गंगा जी को प्रकट किया, क्यों, क्योंकि कृष्ण ने एक राक्षस का वध किया था जिसका नाम था वृत्रासुर, है ना, वृत्रासुर का वृत्रासुर वच्छासुर, हाँ गाय का रूप धारण करके वो वृत्रासुर राक्षस आया, और उसने क्या किया, पूरे गांव में नंदगांव वृंदावन में सब लोगों को मारने लगा, सारे लोगों को डराने लगा, और कृष्ण को मारने के लिए आया था। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, उसके दोनों सींग पकड़े और उसको घुमाकर हवा में फेंक दिया, जब फेंक दिया तो उसका वध हो गया, भगवान के हाथों से कोई नहीं बच सकता। तो सारी सखियां और राधा रानी सबने क्या बोला, तुम्हें तो गौ हत्या का पाप लगेगा, तुमने गाय को मारा। तो कृष्ण बोले मैंने गाय को थोड़ी मारा, ये तो बैल था। तो बोले बैल था तो क्या, मेल में था, लेकिन था तो उन्हीं की जनरेशन का, आपने उनको मार दिया, अब आपको गाय हत्या का पाप लगाया, आपको गंगा स्नान करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं गंगा स्नान करने नहीं जाता, गंगा जी यहाँ आएंगे। तो इसीलिए अपने मान से उन्होंने गंगा को प्रकट किया और वहां पर स्नान किया। अब जब वहां गंगा जी प्रकट हुई तो सारे लोगों का होता है ना मन कि चलो हम भी घूमें, है ना, किसी से बोले मंदिर बना दो तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब मंदिर बन जाता है तो सबका मन होता है चलो दर्शन करके आ जाए, है ना। तो इसी प्रकार से जब गंगा जी प्रकट हुई, मानसी गंगा जो मन से प्रकट हुई, तो सारे के सारी सखियां आई कि चलो हम भी गंगा जी के दर्शन करें। तो यहां से उस पार जाने के लिए, जैसे अभी तो सर्कुलर फॉर्म में इसको बांध दिया गया है, ये पहले थोड़ा और बड़ा था, प्रभु जी बता रहे थे ना 80 बिलियन, इतनी बड़ी इसकी उस हाइट, तो उसी में सोचिए मानसी गंगा भी बहुत बड़ी थी, लेकिन अभी वो छोटा साइज हो गया उसका धीरे धीरे, क्योंकि तो श्रापित हो गया है ना गोवर्धन, जैसे जैसे घटता जा रहा है रोज रोज 100 औंस 100 औंस नीचे घट रहा है। उसके पीछे एक और लीला आती है कि कृष्ण जब चले गए थे वृंदावन छोड़कर, तो उस समय राधा रानी लीला कर रही है कि मुझे वियोग हो रहा है कृष्ण के चले जाने का, तो जो वो वियोग उनको होता है तो उस समय वो क्या करती है, गोवर्धन को जाकर बोलती है कि तुम ही मेरे सखा हो, मेरी मदद करो, मुझे बड़ा वियोग हो रहा है। तो क्या करते हैं, जब हम खड़े हो और हमारे से कोई छोटा सा बच्चा हो और आके बोले मुझे स्कूल में पिटाई हो गई, तो हम क्या करते हैं, अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं ना, इतना ऊंचा गोवर्धन झुक गया नीचे। और आज भी वो जो है धीरे 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 इतना बताते हैं कि बिल्कुल इतना छोटा हो गया जितना बड़ा आज आपको पहाड़ दिखता है, और साथ में वो श्रापित भी है कि तिल के बराबर वो रोज घटता रहेगा, इसीलिए आने वाले समय में गोवर्धन लुप्त हो जाएगा। पहले गोवर्धन बहुत विशाल था, यहां से भी दिखाई दिया जाता था, लेकिन अभी कुछ ही सालों में 20-25 सालों में देखा है गोवर्धन की कुछ चीजें दिखनी बंद हो गई हैं, और आने 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 समय में सब कुछ लुप्त हो जाएगा, यहाँ से दिखाई नहीं देगा, है ना। तो ये हम भाग्यशाली हैं कि हमें कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु जैसे जो है भगवान, उनका दर्शन हो रहा है, उनकी लीला स्थलियां देखने का मौका मिल रहा है ना। तो ये जो गोवर्धन है उसमें फिर क्या होता है कि मानसी गंगा के अंदर जब राधा रानी और उनकी सखियां दूध और मलाई लेकर जाया करती थी, तो भगवान कृष्ण ने एक लीला करी कर वसूलने की लीला, और फिर क्या किया, एक बोटमैन एक नाविक बनकर, हाँ दान घाटी पड़ती है मानसी गंगा से आगे, तो उसमें लीला करी है उन्होंने, क्या कि वो बोले कि मैं तुमसे कर वसूलूंगा नाव में बिठाने का, इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तो सारी सखियां बोलेंगी ठीक है हम आपको कर देंगे, क्या कर है, क्या मांगा उन्होंने बताइए, दूध और दही। भगवान कौन है, माखन चोर, भगवान को माखन चाहिए दूध दही चाहिए, तो भगवान बोले राधा रानी ये मेरे को दे दो दूध दही। तो क्या बन के आए थे, नाविक बनकर आए थे, और फिर जब वो बैठ गए उसके अंदर तो उन्होंने दिया नहीं, बोले हम नहीं देंगे, हमें उस पार कराओ हम पैसे दे देंगे लेकिन दूध दही नहीं देंगे। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं दूध दही मत दो। फिर जब नाव चलने लगी सारी सखियां अपना दूध और घड़ा मटका रख के बैठ गई, तो कृष्ण भगवान बोले अरे 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 नाव डूब रही डूब रही, सामान फेंको सामान फेंको। तो सबने अपने अपना दूध के मटके फेंकने शुरू कर दिए, मटका टप फेंक दिया, उठा के ये उठा के टप फेंक दिया। तो एंड में क्या हुआ, फिर सारी सखियां बोली सारा दूध बह गया राधा रानी पूरी मानसी गंगा में, देखो आज भी दूध इसीलिए चढ़ाया जा रहा है दान घाटे जैसा ना, तो वहां पर सारा दूध बिखेर दिया, वहां पर सारा दूध निकल गया।
आज भी यहां पर साल में एक दफे मानसी गंगा में दूध की झाग
तो उसी प्रकार से उन्होंने जब दूध फेंकना शुरू कर दिया, तो दूध फेंक फेंक के क्या हुआ, कृष्ण भगवान को क्या चाहिए था, दूध दही वो तो मिला नहीं, अब क्या चाहिए, हाँ कर तो चाहिए नहीं भगवान को, तो भगवान तो ब्रह्मांड है, बताइए क्या चाहिए, हाँ प्रेम किसका, राधा रानी का, राधा रानी का प्रेम चाहिए। तो राधा रानी तो आने को तैयार नहीं है उनके पास में, वो तो दूर बैठी है, जैसे नाविक इधर बैठा नाव के दूसरे छोर पर सारी सखियां बैठी हैं मटके लेके, मटके फेंक दिए, अब सखियों का क्या करेंगे, भगवान को तो राधा रानी चाहिए। तो भगवान बोले आप में से जो सबसे सुंदर चमकती स्त्री है गोल्डन एफलिन जिसका कलर है, वो अगर इस पार आ जाएगी तो नाव बच सकती है, अदरवाइज नाव नहीं बचेगी। तो राधा रानी बोली कि कोई दिक्कत नहीं है मैं उस पार आ जाती हूँ। तो राधा रानी जब नाविक के साथ इस पार आ जाती है, तो फिर क्या होता है कि जब राधा रानी आती हैं तो एकदम से भगवान कृष्ण ना क्या करते हैं, नाव को हिला देते हैं, हिलाते हैं तो भगवान कृष्ण के गले में राधा रानी डर के, जैसे होता है ना स्त्री डर जाती है तो पकड़ लेती है पूरा ग्रैब कर लेती है उनको, तो कृष्ण भगवान कहते हैं हाँ अब आप लोगों को मैं किना मेरा कर वसूल हो गया। तो भगवान इस प्रकार की लीला सुंदर सुंदर जो है उन्होंने लीलाएं करी हैं, लेकिन इन लीलाओं से हमको ये समझना चाहिए कि जो राधा रानी है वही आपको कृष्ण के चरणों तक ले जा सकती हैं। इसीलिए राधा रानी जो है वो गुरु का रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे गुरु हैं वो राधा रानी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसलिए हमारी जो संप्रदाय है इसको राधा रानी की संप्रदाय बोला जाता है। एक बार श्रील प्रभुपाद के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत महाराज, वो राधा कुंड जिसमें हम अब जाएंगे थोड़ी देर बाद, उसकी परिक्रमा कर रहे थे और वहां पर कुछ भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। तो उनसे पूछा गया कि आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो हमारे जप में और उनके जप में क्या भेद है। तो उन्होंने बोला, भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि इनके जप में और हमारे जप में ये भेद है, ये कृष्ण का नाम लेते हैं ये सोचकर ये कि कृष्ण भगवान है, supreme personality of Godhead. But we are chanting the name of Lord because we love Radharani, we worship Radharani, and Radharani loves Krishna. That is why we are chanting the name of Krishna. ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण को सुप्रीम नहीं मानते, बट हमारी जो संप्रदाय है ये राधा रानी की संप्रदाय है, है ना, गौड़ीय संप्रदाय जो, क्योंकि राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु बनकर प्रकट होते हैं, है ना, तो ये राधा रानी की संप्रदाय है. तो इसीलिए राधा रानी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे गुरु हैं, और अगर हम गुरु के बताए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो हम कहाँ जा सकते हैं, कृष्ण के चरणों में. अगर हम सोचें हम डायरेक्ट चले जाएं, इट इज इम्पॉसिबल, है ना. तो हमको भक्तों के बताए रास्ते पर चलना चाहिए. जैसे प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे के समझाते हैं कि एक बहुत बड़ा वकील है और उस वकील से आपको कुछ पेपर साइन कराने हैं. आप उसके पास जाओ कि प्रभु जी ऐसा ऐसा है, मेरे ना कुछ प्लॉट के पेपर फंसे हुए हैं, इनको साइन कराना है और आपसे मिलना चाहता हूँ, अपॉइंटमेंट चाहिए. तो मुश्किल हो रही है अपॉइंटमेंट मिलने में, कह रहे मेरे पास 100-200 केस आ रहे हैं ऑलरेडी, मैं कहाँ से आपके लिए टाइम निकालूँ. तो फिर क्या करते हैं, वो एक आदमी थोड़ा दिमाग लगाता है, कहता है इनके गार्डन में ना इनका एक नाती है, ग्रैंड सन, और वो घूमता रहता है, तो उसको टॉफ़ी पसंद है, तो उसके लिए टॉफ़ी लेके जाता हूँ. तो गार्डन में जाते हैं पीछे से और बोलते हैं बेटा आपको टॉफ़ी अच्छी लगती है, ये टॉफ़ी ले लो. तो टॉफ़ी खाता, थैंक यू अंकल. फिर दूसरे दिन ये चॉकलेट ले लो, थैंक यू अंकल. थोड़े दिन बाद दोस्ती हो गई, अंकल आप अंदर क्यों नहीं आते, मैं आपको अपने दादाजी से मिलवाऊंगा. और जब वो दादाजी से मिलवाते हैं तो दादाजी क्या कहते हैं, ये तो आपकी बहुत तारीफ करता है, आप इसको रोज टॉफी खिलाते हैं, बड़ी तारीफ करता है कि मेरे बहुत अच्छे अंकल हैं रोज मुझे टॉफी खिलाते हैं. तो फिर क्या करो, आपका कभी कोई काम हो तो मुझे बताना, मैं कर दूंगा. कह रहे यही तो काम था, इसीलिए तो बेटे को टॉफी खिलाई थी कि मेरे पेपर साइन कराने हैं मुझे अपने प्लॉट के. अच्छा लाइए लाइए, अभी कर देते हैं, तुरंत साइन हो जाएगा. तो क्या रास्ता अपनाया, बैकडोर एंट्री. वो क्या है, भक्तों की सेवा. भगवान के बच्चे, ग्रैंडसन कौन है, जैसे भक्त हैं, जैसे हमारे प्रभु जी हैं, है? और हमारे जितने भी वैष्णवाज हैं, उनके बताए आदेशों का अगर हम पालन करें, उनको अगर हम प्रसन्न कर लें, तो वो डायरेक्ट ले जाकर किससे मिलाएंगे, ग्रैंड फादर से, कौन, कृष्णा. और उनको बोलेंगे क्या कि देखो ये व्यक्ति जो है बहुत इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, मुझे बहुत प्रेम करता है, तो आपको भी बाध्य होना पड़ेगा इसको प्रेम करने के लिए. तो ये इसलिए हमको वो है भक्तों के संरक्षण में रहना चाहिए, अन्यथा हम डायरेक्ट कृष्ण तक पहुंचना चाहें, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीच टू कृष्ण, है ना. और जो ये गोवर्धन है, गोवर्धन को दास, हरिदास वर्यम, दासों में दास सर्वश्रेष्ठ दास बताया गया है. क्यों, क्योंकि जो ये गोवर्धन है, इनके आप देखें तो यहाँ पर कितनी झाड़ियाँ हैं ना, ये रोंगटे खड़े हुए हैं इनके, है ना. उस प्रकार से अगर आप इसको फील करें कि एक व्यक्ति हैं, तो इनकी आँखें हैं राधा कुंड और श्याम कुंड, है ना. तो बताते हैं कि हाँ ये गर्दन है, ये गर्दन है भगवान उनकी. और आप पूरा देखें तो एक मोर की शेप में आपको गोवर्धन, पीकॉक के शेप में पूरा गोवर्धन, अगर आप दूर से देखें तो पीकॉक नजर आता है ना, मोर की शेप में है पूरा गोवर्धन. कहते हैं राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बाजे सेई वृंदावन. वृंदावन वही है जहां पर मधुर बंसी है, जहां राधा कुंड श्याम कुंड और गोवर्धन है. वृंदावन वो नहीं है जहां कचौड़ी और लस्सी है, जहाँ पर लोई बाजार है, जहाँ पर कपड़े हैं बहुत बढ़िया, गोपी ड्रेस है. वृंदावन असली वही है जहाँ राधा कुंड श्याम कुंड. इसीलिए आप देखें जितने भी एग्जॉल्टेड डिवोटीज हैं वो राधा कुंड श्याम कुंड में भजन करते हैं, लेकिन हम जाएंगे राधा कुंड श्याम कुंड तो फिर हमें क्या दिखेगा, स्लिपरी है, कीचड़ है प्रभु जी, मॉस्किटोज, गंदगी, इंसेक्ट्स, ऐसा हमको फील होगा. लेकिन एक्चुअली दिस इज नॉट द सिचुएशन. राधा रानी स्वयं मेल्ट होकर राधा कुंड के फॉर्म में है, स्वयं कृष्ण मेल्ट होकर श्याम कुंड की फॉर्म में. वी कैन नॉट इवन टच दैट वाटर प्योरली. अगर हम उसको छुएं और राधा रानी को फील करें, हमको उसी दिन भक्ति प्राप्त हो जाएगी, सैकड़ों पहाड़ जैसे हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे जो हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे अभी हम, है ना. वो राधा कुंड श्याम कुंड भगवान का साक्षात प्रकट है ना. और राधा कुंड श्याम कुंड की लीला हम वहां पर डिस्कस करेंगे, अभी हम गोवर्धन की डिस्कस कर रहे थे. तो जो गोवर्धन है उन्होंने कितना कितना बड़ा, जैसे प्रभु जी ने बताया सुबह हाथी की सूंड जैसे संबत तक वर्षा उसको अपने ऊपर सहन किया. आपको बोल दिया जाए कि देखो प्रभु जी ऐसा है, मैं ना लेक्चर दे रहा हूँ, आपको छतरी लेके खड़ा होना है और ऊपर है ना हाथी की सूंड जैसी मोटी मोटी धार और ओले पड़ रहे हैं, खड़े रहिए. कितनी देर खड़े होंगे, 5-10 मिनट के बाद आपका हाथ थक जाएगा और आप बोलेंगे प्रभु जी अंदर चलते हैं कमरे में. तो आप प्रभु जी के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप अपने लिए बोल रहे हैं कि प्रभु जी मैं भी थक रहा हूं, मैं भी तो इंसान हूं। लेकिन गोवर्धन एक बार भी नहीं बोले कि आप मुझे, आप पूरे व्रजवासी सब इसके अंदर आ जाइए, अपने आप को एक्सपेंड कर दिया सबको सेवा करने के लिए। और भगवान की कितनी सेवा करी है ना, सोचिए आप अपने ऊपर इतना कष्ट सहे, कितनी बिजली कड़क रही है, कितना सब कुछ बारिश हो रही है और सारी चीजें वो सहन कर रहे हैं। और उसके बाद सारे बाल सखाओं को खेलने के लिए गुफाएं, उनके लिए झरने, यहाँ पर झरने भी हुआ करते थे, अभी झरने तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं लेकिन कुंड हैं, उस समय में झरने हुआ करते थे, कंदराएं होती थी बहुत सुंदर। और आज भी हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं जहां पर हम रुके हुए हैं, वहां पर एक स्थान आता है जहां पर अगर आप परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करने से 24 बार अगर उसको सर्कल काटते हैं तो आपको पूरी गोवर्धन की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। वहां पर गाय का पैर, कृष्ण के चरण का चिन्ह और उनके गाय का चिन्ह और उनकी जो लाठी होती थी उसका चिन्ह आज भी वहां पर विराजमान है, है ना। अभी हम जाकर, हम हमारे पास समय कम है वरना यहाँ पर इतने दर्शनीय स्थल हैं, आपको विश्वास हो जाएगा कि कृष्ण बिल्कुल जंगल में, अंदर जाना पड़ता है मिट्टी की साइड से, बहुत कीचड़ हो गया है, बारिश के मौसम है। लेकिन ये जो सावन का महीना है बहुत सर्वश्रेष्ठ महीना है क्योंकि चतुर्मास आरंभ हुआ है, श्रावण भादो अश्विन और कार्तिक, चार महीने में जो गोवर्धन परिक्रमा करता है वो उसको विशेष कृपा प्राप्त होती है यहाँ पर ब्रज धाम में आने के लिए। और यहाँ पर एक महिमा है कि जो भगवान के प्रिय सखा है उद्धव, आपने नाम सुना होगा ना उद्धव, जो उद्धव को भगवान संदेश, उद्धव जी ने पहली भागवत कथा इसी कुसुम सरोवर के किनारे बैठकर, आगे उद्धव कुंड है यहाँ पर कथा करी है पहली। और लता पता जो है ना, जो यहाँ की लताएं हैं ना, वो बन गए थे उद्धव महाराज, चाहते थे कि मैं यहाँ की लता बन जाऊं, यहाँ की घास बन जाऊं, ताकि जितने भी वैष्णव आए आप जैसे कीर्तन करने वाले, वो जब यहाँ पर अपने चरण रखें तो मेरे सीधे डायरेक्ट सिर पे रखें, है ना। आपको एक चीज बताते हैं, जब हम मंदिर में घुसते हैं तो हम मंदिर को टच क्यों करते हैं, मंदिर की सीढ़ियों को बता सकते हैं आप कोई? हाँ, भक्तों की जो धूल है, चरण रज जो है वो हमारे सिर पर आए, इसलिए हम ये, हम भगवान को रिस्पेक्ट नहीं करते, हम वैष्णवास के चरण को रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। आप गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहां पर पानी से धोया जाता है और जितने भी सेवक करने वाले हैं ना वो उसको पीते हैं और उसको अपने सिर पर डालते हैं, वैष्णवास की चरण धूली सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उद्धव कहते हैं कि मेरे को सबसे बड़ा क्या परिणाम चाहिए अपनी भक्ति का, कि मैं जो है यहाँ की लता बन जाऊं, वृंदावन के अंदर लता बनने का मौका, घास बनने का मौका भी मिल जाए तो मैं क्या होगा, मुझे आनंद प्राप्त हो जाएगा। कोई इसको ढक देते हैं, इसको ढक देते हैं, तो आनंद प्राप्त होगा मुझे अगर मुझे यहाँ पर घास बनने का मौका भी मिल जाएगा, ये चाहते थे उद्धव। तो फिर भगवान कृष्ण ने जब अपने यहाँ से प्रकट लीला अपनी समाप्त करके भगवान वापस गमन कर गए अपने गोलोक धाम में, तो भगवान ने अर्जुन को सेवा दी थी कि जितनी भी मेरी रानियां हैं 16108, इनको द्वारका से ले जाकर कहाँ ले आना, वृंदावन, और वृंदावन में लाकर उनको सेवा करना, उनको यहाँ छोड़ देना। तो अर्जुन जब आ रहे थे तो रस्ते में भगवान ने खुद ही ग्वाल सखा बनकर वहां से उनको किडनैप कर लिया और लाकर उनको वृंदावन में छोड़ दिया। क्यों किया? क्योंकि भगवान अर्जुन को सिखाना चाहते थे कि तुम अपने गांधीव का घमंड मत करो, तुम्हें लगता है कि तुमने महाभारत का युद्ध अपने बल पर जीता है लेकिन तुम्हारा बल मेरे बिना कुछ भी नहीं, तुम निर्बल हो, बलवान नहीं निर्बल हो। इसी प्रकार से हम लोग भी निर्बल हैं, हमें लगता है ना कि वी आर द डूअर्स, अहंकार विमूढ़ आत्मा, कर्ता अहम इति मन्यते, प्रकृति क्रिया मनानी गुणे कर्मानी सर्वेशा। इन तीन गुणों के अंदर हमें लगता है वी आर द डूअर्स, मैं हूं कथा करने वाला, मैं ही हूं द बेस्ट डिवोटी, बट आई एम नॉट, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग बिकॉज कृष्णा इज एम्पावरिंग। हर वक्त कृष्ण हमको शक्ति दे रहे हैं उसके कारण हम बोल पा रहे हैं, है ना। अगर हमें जिस दिन भी ये एहसास हो गया कि हम कृष्ण के बिना हैं हमारी एग्जिस्टेंस, उसी दिन हम फिनिश हैं, कोई हमारे को खड़ा नहीं कर सकता वापस। तो उद्धव को भी इसी प्रकार से लगा था, वो ज्ञानी थे कि अरे आपको कौन वृंदावन में याद करता है, कोई याद नहीं करता। जब यहाँ आए तो देखा कि सारी की सारी सखियां रो रही हैं, आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं उनसे बहुत बड़े बड़े झरने और कुंड बन गए हैं, लेकिन कृष्ण के वियोग में ऐसे हैं कि उनको लगता ही नहीं कि कृष्ण कभी हमसे जुदा हुए हैं, उन्हें हमेशा लगता है कृष्ण हमारे साथ ही हैं। भवरा दिखता है काले रंग का तो कहते हैं तो कृष्ण है, काले रंग का कोई आदमी दिखता है तो कहते हैं कृष्ण है, उद्धव दिखे काले रंग के तो भी लगा कृष्ण है, उनको हर वक्त कृष्ण लगता है। तो अब उद्धव ने आके पूछा कि आपको कभी कृष्ण का वियोग नहीं लगता? कह रहे कृष्ण जब हृदय से जाएंगे तब तो वियोग लगेगा, जब दूर ही नहीं है तो वियोग किस बात का, तुम तो मूर्ख हो। तो उद्धव को लगा कि सबसे बड़ा ज्ञान तो भक्ति का ज्ञान है, इसलिए मुझे भक्ति करनी चाहिए अपने जीवन में। तो उद्धव महाराज यहाँ पर जो है लता बनकर आते हैं और 16008 रानियां यहाँ पर आती हैं तो कहती हैं हमें भागवत और कृष्ण लीलाओं का चर्चा कौन सुनाएगा। तो फिर यहाँ पर उद्धव जी प्रकट होते हैं लताओं में से और पहली श्रीमद भागवतम जो हम सुनते हैं ना सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की कथा, वो सेकंड भागवतम है। फर्स्ट भागवतम यहाँ पर इसी कुसुम सरोवर के किनारे उद्धव जी ने 16,008 रानियों को सुनाई, और इसका अरेंजमेंट किसने किया? परीक्षित महाराज ने। लेकिन परीक्षित महाराज क्योंकि अरेंजमेंट कर रहे थे तो सुन नहीं पाए। जब सुन नहीं पाए तो उन्होंने उद्धव जी से बोला कि मेरे को कथा कैसे सुनने में आएगी? कह रहे कुछ ही समय बाद आपको सुखदेव गोस्वामी सुखताल जो पड़ता है ना हरिद्वार के रास्ते में, वहां पर श्रीमद् भागवतम का संदेश देंगे आपको। तो इस प्रकार से उद्धव ने पहली श्रीमद् भागवतम यहाँ पर कही है। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम गोवर्धन जैसे दास बनने का प्रयास करें। कितने भी ऑब्स्टेकल्स हमारी लाइफ में आए लेकिन हमको स्पिरिचुअल लाइफ छोड़नी नहीं चाहिए। हमें यह नहीं लगना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब है एकदम मस्त, कोई चार भक्त मिल जाएंगे, दो पंखा करेंगे और फिर क्या होगा, मैं जूस पीऊंगा और फिर इंजॉय करूंगा, बड़ी एसी में बैठूंगा, एसी में प्रभु जी आनंद आता है। दिस इज नॉट आनंद, ये फॉल्स है। आनंद असली क्या है, जब जैसे हम लोग ये प्रभु जी हैं सेवा कर रहे हैं पसीना निकल रहा है ना, वो आनंद जो आनंद है वो आनंद आपको वो मिलेगा नहीं एयर कंडीशन के अंदर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम गोवर्धन से आए तो प्रार्थना करें कि हम दासों के दास बनने का प्रयास करें, वैष्णवास के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का प्रयास करें, सिर्फ अहंकार को अपने जीवन से हटाने का प्रयास करें, है ना। ये इंपॉर्टेंट है हमको समझना। और एक छोटी सी सुनाकर समाप्त करेंगे कि एक बार जैसे प्रभु जी ने बताया था कि गोवर्धन महाराज को जब ये रामचंद्र जी का समय था, रामचंद्र जी के समय में सारे के सारे वानर सेना पत्थर फेंक रही थी। कहाँ फेंक रही थी? सेतु बनाने के लिए। रामेश्वरम पे आप देखते हैं आज भी सेतु है, राम सेतु बोला जाता है। तो सारे के सारे वहां पर पत्थर जब फेंक रहे थे तो उसमें एक हनुमान जी भी एक पत्थर उठा के लाए, और वो पत्थर जो था वो द्रोण पर्वत, जैसे प्रभु जी बता रहे थे उनके पुत्र हैं, तो वहां से पर्वत उठा के लाए। और जब वो पर्वत उठा के लाए तो पर्वत जब उठा के ला रहे थे तो हनुमान जी ने यहाँ पर उनको खबर मिली जब वो गोवर्धन से व्रज धाम 84 कोस से निकल रहे थे कि अब जरूरत नहीं है, पुल पूरा समाप्त हो चुका है। तो उन्होंने इस पर्वत गोवर्धन पर्वत को यहीं छोड़ दिया। जब यहाँ छोड़ा तो गोवर्धन क्योंकि कौन है, हरदास वर्यम, दासों के दास हैं, तो जब उनको बहुत ज्यादा क्रंदन होने लगा, वो रोने लगे कि मुझको रामचंद्र जी की सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। एक भक्त का जन्म होता है कृष्ण सेवा, राम सेवा करने के लिए, लेकिन अगर वो सेवा ना कर पाए तो उसका जीवन व्यर्थ है। तो मेरा जीवन व्यर्थ है क्योंकि मैं श्री राम के चरणों में सेवा नहीं कर पाया। जब उन्होंने इस प्रकार बोला तो रामचंद्र जी को भी पता चल गया कि हनुमान जी जो है ऐसे ऐसे एक भक्त की कथा बता रहे। तो कहा चिंता मत करो, मेरे स्वयं भगवान जिनका मैं अवतार हूँ राम के रूप में, मैं जो स्वयं कृष्ण हूँ, वो द्वापर युग में, क्योंकि त्रेता की कथा थी, द्वापर में स्वयं कृष्ण धरती पर आने वाले हैं इस पृथ्वी पर, और फिर वो लीला करेंगे कहाँ, गोवर्धन के ऊपर। तो तुम चिंता मत करो, तुम्हें सेवा का मौका नहीं मिलेगा, तुम्हें इतनी सेवा का मौका मिलेगा जिसके बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसीलिए गोवर्धन की महिमा इतनी महान है, इतनी महान। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आप गोवर्धन शिला को अपने घर ले जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं दिन रात, तो वो बिना प्राण प्रतिष्ठा किए साक्षात प्रकट भगवान के रूप में है ना। भगवान के दास की पूजा करना भगवान की पूजा करने से भी श्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है गोवर्धन प्रकट है। और जैसे रोज ने बताया कि गोवर्धन की पूजा हुई थी, यहाँ पर भगवान ने गोवर्धन को उठाया, तो भगवान 7 वर्ष के थे उस टाइम, 7 ईयर ओल्ड, और 7 दिन तक 7 रात तक भगवान ने उठाया। तो एक दिन में भगवान को भोग लगता है कितनी बार? 8 बार, अष्ट पहर लीला बोलते हैं, 8 बार दिन में भगवान को भोग लगता है। तो भगवान ने 8 दिन 8 बार भोग नहीं खाया कितने दिन तक? 7 दिन तक। तो फिर 7 8 56, इसीलिए 56 भोग लगाया जाता है। 7 दिन बाद सारे वृंदावन वासियों ने क्या किया, अपने अपने घरों से भोग बनाया और 56 भोग भगवान को अर्पित किया। तो भगवान बोले मुझे अर्पित मत करो, किसको अर्पित करो? गोवर्धन को अर्पित करो। तो गोवर्धन खाते रहे, जितना आता था 108 1008 16008 खाते रहे, और क्या बोलते रहे? सुबह आपने सुना था क्या बोलते रहे? अन और। तो बलराम जी बोले ये गोवर्धन बार बार अन और बोल रहा है, इसीलिए एक जगह का नाम है अन्योर गांव, अन्योर विलेज। तो अन और। तो बलराम जी बोले इन्हें अन्न नहीं चाहिए, ये तभी तृप्त होते हैं जब इनको क्या दिया जाता है? तुलसी जब अर्पित करते हैं तभी। तुलसी बिना एक ना मानी, तुलसी के बिना कुछ भी भोग अर्पित नहीं किया जाता, अगर आप करते हैं तो भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। इसलिए तुलसी अर्पित करके भोग अर्पित किया जाता है। तो भगवान ने जब तुलसी हुई तब फिर भगवान सेटिस्फाई हुए, और भगवान ने सारे व्रजवासियों को क्या दर्शन दिए? गोवर्धन के अंदर साक्षात विष्णु रूप में भगवान प्रकट हुए। तो ये बताते हैं भगवान कि मैं जो हूँ अचिंत भेदाभेद तत्व है इसके अंदर, मैं हूँ भी और नहीं भी। जैसे हमारे अंदर कौन है? परमात्मा। घोड़े के अंदर कौन है? परमात्मा। कुत्ते के अंदर कौन है? परमात्मा। लेकिन वो कृष्ण नहीं है। तो भगवान का एक्सपेंशन के कारण हम चल पा रहे हैं, लेकिन वो स्वयं भगवान नहीं है। तो ये अचिंत भेदाभेद तत्व में हूं भी और नहीं भी हूं, है ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी है भी और ट्रांसफॉर्मर नहीं भी है। तो ये अचिंत भेदाभेद तत्व हमको समझना चाहिए। सूर्य की किरण आती है जब हमारे घर में, तो हम कहते हैं सूर्य आ गए, सूरज की रोशनी आ गई, लेकिन सूर्य नहीं आया, कौन आई है? रोशनी आई है। अचिंत भेदाभेद तत्व हमको है भी और नहीं भी है। तो इस प्रकार से गोवर्धन की ग्लोरीज अनगिनत ग्लोरीज है। और यहाँ पर इतनी बड़ी परिक्रमा है, 8 घंटे लगते हैं इसको पूरी परिक्रमा करने में। तो हम किसी दिन एक ट्रिप प्लान कर सकते हैं जिसमें सिर्फ हम लोग जप करें, कीर्तन करें और परिक्रमा करें। तो 8 घंटे लगते हैं बड़ी परिक्रमा करने में, 5 घंटे और फिर 3 घंटे इसमें। और इतनी सुंदर सुंदर लीला स्थलियाँ हैं। और प्रभु जी जैसे हमारे अच्छे अच्छे भक्तों के संग में आप आएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, है ना। तो इससे क्या नष्ट होता है? हमारा अहंकार नष्ट होता है ना, अहंकार। कार खरीद लेते हैं ना लोग, मर्सिडीज ऑडी, तो फिर क्या बोलते हैं? माय कार। अहम मतलब माय कार, अहंकार। माय कार अहंकार, तो वो अहंकार देती है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो वो युग था ना, द्वापर युग, उसमें एक एक घोड़े के ऊपर 500 किलो सोना लगता था, सिर्फ जीन के ऊपर, घोड़े की जीन पे, जीन होती है ना जिसपे बैठते हैं, 500 किलो सोना लगता था एक जीन के ऊपर, सोने के बिस्कुट, और जो खाते थे वो सोने की थाली होती थी, है ना। फिर भी सारे के सारे जैसे ही कृष्ण को देखते थे तुरंत घोड़े से उतर जाते थे। और आजकल हमारे पास क्या है? प्लास्टिक की कार। और हम क्या करते हैं जब मंदिर के आगे से गुजरते हैं? बस हो गया ये, बस इतना ही भगवान से रिलेशन है, ये रिलेशन काम नहीं आएगा। भगवान जहां दिखे, भगवान के भक्त जहां दिखे, ये अपराध होता है, हमें वहां उतरना चाहिए। और अगर हम दंडवत नहीं कर सकते तो कम से कम हमें हृदय से हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी ग्लोरीज है, समय हो गया, तो हम लोग चलते हैं फिर आगे। और राधा कुंड श्याम कुंड, किसी प्रभु जी हमें थोड़ी सी और लीलाएं सुनाएंगे राधा कुंड श्याम कुंड के बारे में, और नहीं कुसुम सरोवर के बारे में और गोवर्धन की लीलाओं के बारे में। ले लीजिए आप इस पे बोलिए माइक। बाबा जी अपना नाम भी बताइएगा।
जय जय श्री राधे।